ओम शांति। एक बार स्थान पर खड़े होंगे और फिर बैठेंगे। एक शक्तिशाली दिनचर्या शक्तिशाली अमृत वेले से शुरू हो। ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में ऐसी 8 या 9 बातें हैं। जब वो सारी बातें होगी तो मन में एक संतोष का भाव होगा। सबसे पहला अमृत वेला। अगर वही नींद में गुजरता है जिसकी कल हमने चर्चा की थी तो सारा दिन सुस्ती रहेगी। यदि अमृत वेला ही परम धाम में शिव बाबा से शक्तिशाली कनेक्शन हो जाए तो वो प्यार, वो अतीन्द्रिय सुख, वो अलौकिक खुशी आत्मा को सारे दिन भर खींचती रहेगी, याद आएगी। दूसरा मुरली चिंतन, केवल सुनना नहीं, केवल सुनाना नहीं, परंतु मुरली ज्ञान की गहराई में जाना और गहराई में जाकर रत्न चुन कर लाना। तीसरा भोजन, भोजन बनाना और भोजन खाना तपस्या हो जाए। चौथा ट्रैफिक कंट्रोल, व्यस्त दिनचर्या में अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद ही सेट करना है। जरूरी नहीं हर बार गीत बजे और हमको सुनाई दे। जब जब सेवाओं से थोड़ा फ्री हो मन को स्थिर कर स्पिरिचुअल ड्रिल करते रहनी है। कई सारे ड्रिल्स बाबा ने दी है, छोटी छोटी ड्रिल। मैं आत्मा परम धाम गई और वापस आ गई, मुझ आत्मा से शक्तियों की किरणें फैल रही है। अशरीरी हो जाना एक सेकंड में, जाना और आना, सूक्ष्म वतन जाना, बाबा से तिलक लगाकर वापस आ जाना। एक सेकंड में 5 स्वरूपों का अभ्यास। अगला कर्मयोग, सारे दिन भर सेवाएं करते हुए जिसकी सेवा कर रहे उसी को भूल नहीं जाना है। मुंबई में सबसे पहली प्रदर्शनी लगी और अव्यक्त बाप दादा का संदेश आया गुलजार दादी के द्वारा। बाबा ने कहा बच्चों ने बहुत अच्छी सेवा की, बच्चों में उमंग उत्साह बहुत है, बाप दादा बहुत खुश है सभी बच्चों पर। 1 पेज का संदेश, बहुतों की सेवा हो गई, बहुतों को संदेश मिल गया। बाप दादा ऐसे बच्चों को देखकर खुश होते हैं। और लास्ट में एक लाइन थी, सेवाएं बच्चों ने बहुत अच्छी की पर सेवा करते हुए बच्चे बाप को भूले हुए थे, फुल स्टॉप। लास्ट लाइन क्या थी, सेवाएं करते हुए बच्चे बाप को भूले हुए थे। संदेश पूरा हुआ। हत कार्डे दिल यार्डे, जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको बीच बीच में अशरीरी होकर याद करना, धन्यवाद देना, आह्वान करना, छत्र छाया का अनुभव करना। मोहम्मद पैगंबर जब तपती हुई भूमि रेगिस्तान पर चलते थे, ऐसा कहा जाता है ऊपर से बादल उनके ऊपर चलते थे, जहां वो जाते थे बादल उनके ऊपर जाते थे, छाया पहुंचाते थे उनको। और वो बादल केवल उन्हीं को दिखते थे और किसी को नहीं। सारी दिनचर्या में जहां मैं जा रहा हूं वहां परमात्मा छत्र छाया मेरे साथ साथ चल रही है। अगला नुमा शाम का योग, जैसे अमृत वेला नियमित है वैसे नुमा शाम का योग भी नियमित कर देना है। यदि कोई सेवा में व्यस्त है और बात है, यदि कोई ऑफिस में है, ट्रैवल में है, कोई महत्वपूर्ण कार्य में है, परंतु वहाँ पर भी जैसे ही शाम का समय आता है 6:30 से 7:30 या 7 से 7:30 स्वयं को बाबा से जोड़ देना है। चाहे गाड़ी चला रहे, ऑफिस में है, बस में है, ट्रेन में है और कहीं है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो एक जगह बैठकर अपने ही घर में या सेवा केंद्र पर यदि है अशरीरी हो जाओ। यही अभ्यास अंत में काम आएगा और कोई अभ्यास काम नहीं आएगा। इसी की प्रैक्टिस चाहिए, इसी का अभ्यास चाहिए। उसके बाद में रात्रि ज्ञान की चर्चा, चाहे सेवा केंद्र या घर जहां पर एक से ज्यादा लोग ज्ञान में चलते हैं, वो रात में सोते समय, सोने से पहले रोज की जो साकार मुरली है उसको डिस्कस करें। ये बहुत आवश्यक है। बिना चर्चा के ज्ञान स्पष्ट नहीं होता और चर्चा के लिए 2 लोगों की आवश्यकता है केवल। कई सारे सेंटर्स हमने देखे हैं जहां पर रात्रि क्लास होता है, सभी बहनें मिलकर बैठती है और ज्ञान की चर्चा करती है, लेन देन। कई सारे कुमारों के ऐसे पांडव भवन देखे हैं छोटे छोटे, जहां सब कुमार एक साथ रहते हैं, जॉब करते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं। एक किताब है यज्ञ में, वाह रे मैं ब्राह्मण आत्मा, देखिए किताब है जिसमें बाबा के महावाक्यों का संकलन है। उसमें एक चैप्टर है ब्राह्मणों के कर्तव्य, 14 कर्तव्य दिए हैं, उसमें से 14वां कर्तव्य लिखा है ज्ञान की चर्चा करना, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। हमारे मुख से ज्ञान निकलना चाहिए, एक दूसरे से पूछना ये मुरली में शब्द था इसका अर्थ क्या, ये नई बात आई है चोचो का हलवा, बाप को उकीर रहता है, ये उकीर क्या है, ओना क्या है, गुल बकावली की कहानी, ये गुल बकावली क्या है, नए नए शब्द और नई नई बातें मुरली में आते, तिजरी की कहानी, ये तिजरी कौन है, ये तिजरी क्या है, आपस में चर्चा करनी है। जैसे कहा, जब तक ज्ञान की चर्चा नहीं, ज्ञान स्पष्ट नहीं होगा। और अगला, रात को सोने की विधि, किस तरह हम सोते हैं, बातें करते करते सोते हैं, सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं और फिर सोते हैं, टीवी देखते देखते सोते हैं, क्या करते हुए सोते हैं। अपने सोने की विधि का टाइम टेबल बनाना है और उसको फॉलो करना है। उसमें 2-3 चीजें जरूरी है। सोने से पहले कुछ तो ज्ञान की बातें पढ़कर सोना है, हो सकता है छोटा सा पैराग्राफ। मधुबन में हम लोग एक महा प्रोजेक्ट चालू है जिसमें ये लक्ष्य रखा है कि अगले 1 साल में 1969 से लेकर तो 2016 तक की जितनी अव्यक्त वाणियां हैं सबको एक बार जरूर पढ़नी है। सारी अव्यक्तवाणियां एक बार पढ़नी हो पढ़ के होनी चाहिए, कभी भी पढ़ो पर एक साल में पढ़ना ये टारगेट है। उसके लिए रोज अव्यक्तवाणियों का अध्ययन करना होगा सोने से पहले। एक, बाबा को अपना समाचार सुनाना। दो, थोड़ा सा योग का अभ्यास करना और फिर योग निद्रा। योग निद्रा के बारे में सुना है? मधुबन में कभी एक क्लास इस पर कराई थी, योग निद्रा। अपने आप में एक टेक्निक है योग निद्रा सोने की, साइंटिफिक टेक्निक है जिस पर बहुत सारा रिसर्च हुआ है, हो रहा है, किस तरह सोया जाए। ड्रीम ऑफ योग, स्लीप ऑफ योगा जिसको कहते हैं, योग निद्रा, जिसमें अगर 2 घंटा भी कोई सो जाए या 15 मिनट भी सो जाए तो उसको ऐसे अनुभव होगा कि 6 घंटा नींद हो गई। उस आर्ट को, टेक्निक को कहा जाता है योग निद्रा। उसमें 8 स्टेजेस हैं, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, आप सुन सकते हैं। द आर्ट ऑफ योग निद्रा, पहले कैसे सोते समय शरीर को शिथिल कर देना, फिर चेतना को संपूर्ण शरीर में घुमाना, एक एक अंग देखना, अंगूठा शांत रिलैक्स, शवासन जिसको कहते हैं, वो पहली स्टेज है। रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना को घुमाना, श्वासों की तरफ ध्यान देना, फिर शक्तिशाली संकल्प करना, फिर शरीर से डिटैच हो जाना, ऐसी बहुत सारी स्टेजेस है उसमें। क्योंकि रात को हम किस अवस्था में सोते हैं वही संकल्प सीधा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और रात को सोने की ये जो विधि है उसमें बहुत सारे व्यसन, आदतें, संस्कारों का परिवर्तन हो सकता है। किस तरह के ऑटो सजेशन, संकल्प हम मन को देते हैं, जैसे संसार में योग निद्रा का प्रयोग डी एडिक्शन के लिए किया जाता है। किसी को दारू पीने की आदत है, सोते सोते योग निद्रा करते करते संकल्प करता है, मैं इस आदत से मुक्त हो रहा हूं। संकल्प करने की 3 विधियां हैं, अफर्मेशन जिसको कहते हैं, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा फ्यूचर टेंस, तीसरा नेचुरल। पहला, अगर कोई दारू पी रहा है 10 साल 20 साल से तो वो संकल्प करता है, पहली विधि, मैं इस आदत से मुक्त हूं, मैं इस आदत से मुक्त हो रहा हूं, ये पहला प्रेजेंट टेंस वर्तमान। दूसरा भविष्य, मैं जल्दी ही इस आदत से मुक्त होने वाला हूं, मैं जल्दी ही इस आदत से मुक्त होने वाला हूं, मैं जल्दी ही इस आदत से मुक्त होने वाला हूं। तीसरा सहज नेचुरल, मैं इस आदत से बहुत ही ज्यादा मुक्त हूं, मुझे तो कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ रहा, इतना आसान है इसको छोड़ना, एकदम नेचुरल। जो संस्कार बहुत कड़ा है, जो छूट नहीं रहा है, 3 प्रकार के संकल्प, एक वर्तमान, दूसरा भविष्य, तीसरा प्राकृतिक नेचुरल। इससे छूटना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं अमृत वेला जल्दी उठ रहा हूं, मैं अमृत वेला जल्दी उठ रहा हूं, पहला, मैं अमृत वेला बहुत जल्दी उठ रहा हूं, बहुत जल्दी मेरा अमृत वेला शक्तिशाली होने वाला है, भविष्य। और नेचुरल, अमृत वेला उठना तो मेरा स्वभाव है, अपने आप बिना किसी अलार्म के मेरी आंख 3:30 बजे अपने आप खुलती, चाहे कितने ही बजे सोऊं। 3 प्रकार, सोमान कहो, ऑटो सजेशंस कहते हैं इसको, आत्म सुझाव, या अफर्मेशन कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में। तो रात को सोने की विधि, तो दिनचर्या में इतनी चीजें आवश्यक है। आज जो विषय हम ले रहे हैं वो बोल का है, सोल, रोल और बोल, सोल के बोल का क्या रोल है? किसी देश का एक राजा, एक दिन उसको अचानक संकल्प आया कि संसार में मनुष्य के लिए सबसे जरूरी वस्तु कौन सी है, और उसने कहा कि मुझे एक एग्जीबिशन बनाना है जिसमें संसार के सभी लोग आए और जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक है वो वस्तु हाथ से बना के रखे। कई सारे लोग आए और किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने धन का चित्र बनाया, किसी ने चित्र बनाया, किसी ने मूर्ति बनाई, किसी ने पद का, किसी ने पैसा बनाया, छोटी छोटी प्रदर्शनी में छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के चित्र, कलाकृतियां, वो पूरा हॉल भर गया कि जो जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। राजा सब कुछ देखते गया, एक चित्र, दूसरा चित्र, एक कलाकृति, दूसरी कलाकृति, कोई मूर्ति, कोई कुछ तो कोई कुछ, और लास्ट में उसने देखा एक जगह पर एक मुख का चित्र, एक मूर्ति जैसी बना हुआ स्टैचू, और नीचे लिखा था जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है स्वीट टंग, मीठी जबान। तो राजा बड़ा खुश हो गया, ये तो एकदम नई बात है, बुलाया, किसने बनाया ये? तो वो कारीगर, वो व्यक्ति आया, उसने कहा मैंने बनाया। राजा ने कहा तुमने ये क्यों लिखा? तो उसने अपना उत्तर बताया कि बाकी सब कुछ है परंतु यदि जबान से जहर टपकता है तो जीवन में कड़वाहट होगी, और यदि जबान से अमृत टपकता है तो सारे संबंध मधुर होंगे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। राजा बहुत खुश हो जाता है कि जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है, मीठे बोल। कुछ समय के बाद राजा को यह संकल्प आता है कि जीवन में सबसे खराब वस्तु कौन सी है, और वो फिर से कहता है ऐसी कोई प्रदर्शनी में चित्र, कलाकृतियां, वस्तुएं बनाओ जो जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो लोग नए नए चित्र और बहुत सारी बातें बनाते, कोई तलवार, कोई चाकू, कोई जहर की बोतल, प्रदर्शनी में अलग 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 कलाकृतियां। राजा देखते जाता है, देखते जाता है। पहले जो कारीगर था उसको बहुत सारा उसने इनाम दे दिया। अब कुछ दिनों के बाद ये नई प्रदर्शनी, देखता है, देखता है, देखता है, कुछ उसको पसंद नहीं आता है, और लास्ट में आता है फिर से एक ऐसे चित्र के पास, एक ऐसी मूर्ति जैसा बना हुआ कि जिसमें मुख का चित्र है और नीचे लिखा है पॉइजनस टंग, जहरीली जबान। राजा को आश्चर्य होता है ये किसने लिखा। फिर से उसको बुलाते हैं, किसने बनाया? तो वही व्यक्ति आता है जिसने पहले वो चित्र बनाया था। वो कहता है तुमने ये क्यों लिखा? तो वो फिर समझाता है कि राजन, जो जबान के दिए हुए घाव होते हैं वो कभी नहीं भरते, तलवार के घाव भर जाते हैं, पर जबान से जो घाव दिए जाते हैं, चोट की जाती है, वो कभी नहीं भरती। और एक कड़वी जबान और जहरीली जबान, जीवन में सबसे खराब चीज है। राजा फिर खुश होता है और फिर उसे इनाम देते हैं। तो कहने का भाव, हम क्या बोल रहे हैं? कल का स्लोगन क्या था? क्या था? स्वीट और शॉर्ट बोलो, ज्यादा बोलने से क्या होता है? एनर्जी किसकी? दिमाग की। किसके दिमाग की? बोलने वाले की या सुनने वाले की? और सुनने वाले की, उसकी भी हो जाती होगी। तो हमारे बोल कैसे हो? उससे भी बड़ा प्रश्न है, बोल के पीछे क्या काम करता है? बोल के पीछे क्या काम करता है? जैसे एक व्यक्ति होता है, वो अभी घर से बाहर निकल रहा ही होता है तो उसका बहुत पुराना सा मित्र आ जाता है, और वो मित्र थोड़ा गरीब है, फकीर जैसा है, पुराने वस्त्र है, कई सालों के बाद दोनों मिल रहे हैं और बहुत खुश होते हैं दोनों मिलके। और ये जो मित्र था, जिसका घर था, वो कहता है, तुम थोड़ा बैठो, मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, वो करके मैं आता हूँ, मुझे दो तीन लोगों से मिलना है। तो ये जो मित्र आता है, उसका जो फकीर जैसा है और गरीब है, वो कहता है, इतने दिनों के बाद तो हम मिले हैं, क्यों ना मैं भी आपके ही साथ चलूं, हम दोनों साथ में चलेंगे, बीच में बातें भी होगी। वो कहता है, ठीक है चलो। पर वो कहता है, मैं कैसे आऊं तुम्हारे साथ, मेरे कपड़े तो देखो कितने फटे पुराने हैं। वो कहता है, कोई बात नहीं, यहाँ के जो राजा था उसने मुझे एक बार बहुत अच्छा ड्रेस दिया था इनाम में, मैंने आज तक उसको पहना नहीं, आज तुम उसको पहन लो, उसमें पगड़ी है, उसमें कोट है, बहुत अच्छा बहुमूल्य वस्त्र है। तो वो उसका गरीब दोस्त कहता है, ठीक है, और वो पहन लेता है। और जैसे ही वो पहनता है, ये जो व्यक्ति है जिसका वो ड्रेस है, उसको देखकर उसे ईर्ष्या होने लगती है, ये तो मैंने खुद नहीं पहना। फिर अपने आप को समझाता, कोई नहीं, मेरा ही तो मित्र है आखिर। और दोनों जाते हैं और फिर वो पहले घर में पहुंचते हैं और वो स्वागत सत्कार होता है, और फिर ये कहते हैं, ये कौन है? तो वो कहता है, मित्र, ये मेरा दोस्त है, फला फला इसका नाम है। और वो ये देखता है, सबकी नजर उस ड्रेस की तरफ है, तो ये कहता है, ये मेरा दोस्त है, इसका ये नाम है, ये यहां से आया है, और रही बात इस ड्रेस की और पगड़ी की, वो मेरी है। तो एकदम से वो जो दोस्त होता है गरीब, उसको एकदम बुरा लगता है, और वो जो गेस्ट जो होस्ट होते हैं जिनके घर ये जाते हैं, उनको भी अजीब सा लगता है, और इस व्यक्ति को भी बुरा लगता है, ये मैंने क्या कह दिया, ये कहने की क्या आवश्यकता थी। तो वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो वो जो दोस्त होता है गरीब, वो कहता है, ये तो हद हो गई, मैं तो अब नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ, मैं जा रहा हूं। वो कहते हैं, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए था, पर क्या करूं, अपने आप निकल गया, अब मैं अपने आप को समझाता हूं कि ऐसा मुझे नहीं बोलना है। ये बोलने की जरूरत क्या थी कि मेरा ड्रेस है? तो कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर वो दूसरे घर जाते हैं, और दूसरे घर जाते ही तो देखता है, घर के सारे लोगों का ध्यान उस ड्रेस की तरफ है, इतना अच्छा ड्रेस है, इतनी अच्छी पगड़ी है। तो वो व्यक्ति फिर कहता है, ये मेरा दोस्त है, फला फला इसका नाम है, कहीं दूर से आया है, और रही बात ड्रेस की, उसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। फिर से एकदम सब कुछ उल्टा पुल्टा, एकदम बुरा लगता है उस दोस्त को भी, और इसको भी बुरा लगता है कि मैंने ये क्या कह दिया। और फिर अपने मन को समझाता है, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्या बताने की जरूरत है किसी को, ड्रेस चाहे उसका हो मेरा हो क्या फर्क पड़ता है। वो कहता है, बाहर निकलते हैं, दोस्त कहता है, अब तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, ये लो तुम्हारा ड्रेस। वो कहते हैं, नहीं नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो, नहीं तो मैं तो जीवन भर पछताऊंगा कि मैंने ये क्या कर दिया। तीसरे घर जाते हैं और फिर वो सारों का ध्यान उसके ड्रेस की तरफ, इतना अच्छा ड्रेस राजा का दिया हुआ, इतनी अच्छी पगड़ी, कोट, शूज, जूते। तो वो फिर से कहता है, ये मेरा दोस्त है, अब अपने मन को पूरा समझा चुका है, सोचा ये गलत बोलने के वजह से कितना खराब होता है, कितना नुकसान होता है, बिल्कुल ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। वो कहता है एकदम अभी संयम रखूंगा, कंट्रोल रखूंगा अपने बोल पर। कहता है ये मेरा दोस्त है, फला फला इसका नाम है, फला फला जगह से ये आया है, और रही बात ड्रेस की, उसके बारे में तो मुझे कुछ भी बोलना ही नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? बोल के पीछे क्या काम कर रहा है? कुछ और काम कर रहा है। सोचा तो उसने था मुझे ऐसा बोलना है, परंतु अचानक बोल कुछ और निकल रहे है, सोच कुछ और रहा है व्यक्ति, बोल कुछ और निकल रहे है। मन को समझा रहा है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, आखिर मेरा मित्र है, परंतु कुछ और ही निकल रहा है। ये तारतम्य नहीं है, हार्मनी नहीं है विचार में और बोल में। क्यों? क्या काम करता है? हम जो सारे दिन भर बोलते रहते हैं उसके पीछे कुछ तो होगा, और वो कुछ है हमारी भावनाएं। बोल के पीछे क्या काम करता है? हमारी भावनाएं। कोई एक व्यक्ति है जिससे हमें बहुत घृणा है, नफरत है एकदम, जिसने हमारे जीवन में बहुत हमारे साथ बुरा बुरा किया, और फिर वो व्यक्ति कहीं चला गया हमेशा के लिए, और 10 साल वो मिला ही नहीं, 10 साल में हम ज्ञान में आ गए और डेली मुरलियों का अध्ययन किया और समान का अभ्यास किया, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और उस 10 साल में कभी किसी को दुख नहीं दिया बोल से, हमारे बोल बहुत मीठे हो गए। और एक दिन अचानक वही आत्मा 10 साल पुरानी वाली एकदम आंखों के सामने आ गई, और तुरंत उसके लिए क्रोध भरे शब्द निकल गए, और हम आश्चर्य कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया, हमने तो किसी को कभी दुख दिया ही नहीं बोल से, और आज ये इतने क्रोध वाले शब्द क्यों निकल गए? क्यों? क्योंकि भावनाएं, भावनाओं का परिवर्तन नहीं हुआ था इसलिए। तो बोल के पीछे भावनाएं काम करती है। ऐसा कहा जाता है मनुष्य के 3 तल है, पहला तल सबसे ऊपर सतही सुपरफिशियल कर्म का तल, जो हम देख रहे हैं, ये व्यक्ति ने ये किया, वो व्यक्ति ने वो किया, उसने अच्छा किया, उसने बुरा किया, पर ये सबसे ऊपर का तल है। उसके नीचे है विचारों का तल, दूसरा व्यक्ति सोच क्या रहा है अंदर, ऊपर से दिखता है बहुत कठोर, पर उसके विचार शायद कुछ और होंगे। और तीसरा तल है सबसे गहरा, भावनाओं का तल। इन 3 तलों पर मनुष्य चेतना काम करती है, कर्म, विचार और भावनाएं। भावनाएं बहुत गहरी होती है, इसलिए मुरलियों में तो शब्द आते हैं कई बार और हजारों बार हमने सुने हैं, शुभ भावना, शुभ कामना। क्या वास्तव में हमारी शुभ भावना है? शायद नहीं। वो व्यक्ति जिसने हमें बहुत दुख दिया, ग्लानी की, निंदा की, अपमान किया, सताया, पीड़ा दी, अपशब्द बोले, मदद नहीं की, आरोप लगाए झूठे, उसके प्रति हमारी कौन सी भावना है? रामायण में दिखाया है श्री राम कैकेयी के लिए कैसी भावना थी? नफरत थी क्या? इतना सब कुछ किया, कैकेयी कहती है कम से कम मुझ पर क्रोध तो करो राम, मुझे बोलो तो कि तुमने ऐसा क्यों किया, कुछ तो कहो। वो कहता है मैं कुछ क्या कहूं तुमसे, कुछ है ही नहीं मेरा तुम्हारे बारे में, एक भी नेगेटिव थॉट नहीं है, नहीं तो कोई दूसरा होता तो विद्रोह कर दिया होता, बगावत कर दी होती। राम का जो चरित्र दिखाया, आदर्श चरित्र दिखाया है, चाहे किसने कुछ भी किया, क्योंकि जो व्यक्ति कर रहा है वो हमारा ही हिसाब है, इसके लिए हमारी भावनाएं किसी के प्रति भी दूषित ना हो, किसी के प्रति हमारा मन मैला ना हो। यदि है तो कभी ना कभी उसके लिए कुछ ना कुछ निंदा के शब्द जरूर निकलेंगे। कोई एक व्यक्ति है जिसने हमारी बहुत निंदा की, हमारे पीठ पीछे, और हमारे सामने बहुत अच्छा व्यवहार है, हम कितना भी चाहे छुपाना, कुछ ना कुछ हमारे मुख से निकलेगा ही उस व्यक्ति के बारे में। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण, यदि हम किसी की निंदा करते हैं, ठीक है, और वो व्यक्ति वहां है नहीं, तो ये जरूर समझना वो बात एक ना एक दिन उस तक जरूर पहुंचेगी किसी ना किसी के द्वारा। ऐसा हो नहीं सकता कि हमने बहुत गुप्त रीति से किसी की निंदा की और उस तक वो बात नहीं पहुंची। कोई ना कोई उस तक वो पहुंचा ही देगा कि इसने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, फिर बहुत बुरा लगेगा। और हम उस व्यक्ति के सामने नहीं कहना चाहते, पर उस तक पहुंचेगी जरूर। दीवारों को भी कान होते हैं। तो काम किस पे करना है? तीन तलों में से सबसे नीचे का जो तल है, सबसे गहरा, भावनाएं। क्योंकि भावनाएं शुभ होगी तो अपने आप बोल शुभ होंगे। भावनाएं ठीक नहीं है तो बोल पर काम कितना भी करो। ये मेरा दोस्त है, फला फला जगह से आया है, और रही बात ड्रेस की, वो तो मेरा है। फिर समझाया, मेरा दोस्त है, फला फला जगह से आया है, रही बात ड्रेस की, वो इसी का है। फिर वही निकलेगा, फला फला दोस्त है, रही बात ड्रेस की, उसके बारे में तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि अंदर से गहरे में समाया है, ये ड्रेस मेरा है, तारीफ मेरी हो जानी चाहिए, पर दोस्त भी तो है। इसलिए बार बार दबाया अपनी भावनाओं को, और वो भावना फिर फिर बाहर निकल रही है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। इसलिए दुख भी हुआ। तो सोल, आत्मा के बोल उसकी भावनाओं पर निर्भर करते हैं। और ब्राह्मण आत्माओं के बोल कैसे होने चाहिए ये आप बताएंगे। कैसे? कम से कम 50 बातें बतानी है। सीधा वरदानी पहले नीचे से चालू करेंगे। कैसे होने चाहिए? मीठे। और कब मीठे होंगे? जब भावनाएं मीठी होंगी, किसी के प्रति घृणा है, नफरत है, गलत भावनाएं, हमारे साथ इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया है, हमें मदद की आवश्यकता थी, हम हॉस्पिटल में पड़े थे, एक बार भी देखने नहीं आए, अब वो बीमार है तो हम देखने क्यों जाएं? हम क्यों देखने जाएं? हमें जब मदद की जरूरत थी तो उसने मदद नहीं की, अब उसे मदद की जरूरत है, क्या करेंगे? मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? हम किसकी संतान हैं? बाबा ने कहा है, तुमने मेरा बहुत अपकार किया है, मैं फिर भी तुम्हारा उपकार करने आता हूं। कुछ दिन पहले एक मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा है कि तुम ने मुझे सर्वव्यापी कहा, तुम एक एक पर केस हो जानी चाहिए, तुम पर तो कोर्ट में केस चलनी चाहिए। ऐसा भी कहता है, और कहीं भी फिर करता है कि बाप फिर भी तुम्हारा उपकार करने आता है। किसी मुरली में बाबा ने कहा है कि जिस जिस ने मुझे सर्वव्यापी कहा, एक एक को नहीं छोड़ूंगा, मैं हिसाब लूंगा। फिर दूसरी ओर कहता है, बाप तो रहम का सागर है। तो उसकी भावनाएं बेहद की है, जिसने कुछ कहा, क्या किया। वो जो बच्चे बाबा से हिस्ट्री हॉल में मिले, 10-10 मिनट बाबा मिल रहे उनसे, हिस्ट्री हॉल में 10-10 मिनट का टाइम देकर वरदान सुना रहे, और उनमें से कितने ही बाबा को छोड़कर चले गए। जब बाबा उनसे मिल रहे थे और उनसे बात कर रहे थे, तब क्या उसे पता नहीं था ये छोड़ के जाने वाला है? तब भी उसे पता था ये छोड़ के जाने वाला है यज्ञ को। तब भी उसे पता था ये कहीं जाकर कुछ और ज्वाइन करेगा। कितनी कुमारियों से बाबा मिले, क्या उन कुमारियों से बात करते समय बाबा को ये नहीं पता था कि ये कुमारी अभी थोड़े दिन में संसार में चली जाएगी, और जिनके लिए सब लोग सोचते ये तो बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी बनने वाली है, उसको तो तब भी पता था, फिर भी उसकी भावनाओं में कोई परिवर्तन नहीं। इतनी बेहद की और इतनी ऊंची भावनाएं हैं। तो हमारे बोल कैसे होने चाहिए? सबसे पहला मीठे होने चाहिए, और मीठे कब होंगे? जब भावनाएं मीठी होगी। और भावनाएं मीठी कब होगी? जब दो काम करेंगे, एक जिसने हमारे साथ बुरा किया है उन सबको माफ कर देना, अमृत वेला ये अभ्यास करना है, उन सभी आत्माओं को इमर्ज करना जिन्होंने इस ब्राह्मण जीवन में हमको बहुत सताया है ऐसा हमको लगता है, उन सबको क्या कर देना? बेशर्त माफी। और दूसरा काम, आत्माओं से माफी मांगना। पता नहीं कितनी आत्माओं को हमने दुखाया, सताया, पीड़ा पहुंचाई, उनकी बद्दुआएं साथ साथ चल रही, इसलिए तो पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ रहा है। जरूर कोई आत्मा है जिसके संकल्प हमें आगे बढ़ने से रोक रहे। ये दो काम करने, माफी मांगना और माफ कर देना, ये होगा तब भावनाएं शुद्ध होगी, और जब भावनाएं शुद्ध होगी तब बोल मीठे होंगे, तब तक नहीं, नहीं तो दमन होगा, दिखावे वाले बोल होंगे, झूठे बोल होंगे। तो पहला मीठे, दूसरा शुभ हो। तो जब भावनाएं शुभ होगी तो बोल भी शुभ होंगे। ऐसा हमको किसने अधिकार दिया कि किसके लिए कह दो कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि कम है, तुमको इतना भी नहीं आता है, कितनी बार सिखाया फिर भी समझते नहीं। वो तो वैसा ही है, उसको कितना भी समझाओ नहीं समझने वाला है, ये ब्राह्मणों की भाषा है, उसको ज्ञान सुनाने से कोई फायदा नहीं। हम उसको स्टैंप लगा रहे हैं कि ये कभी भी ज्ञान में नहीं आएगा। हम कौन है किसी को स्टैंप लगाने वाले? और ब्राह्मणों में एक शब्द है बीके और दूसरा नॉन बीके। नॉन बीके शब्द इतना अच्छा नहीं है कि अच्छा है, हम किसी को कैसे स्टैंप लगा सकते हैं? कोई दूसरा शब्द होना चाहिए, जैसे भावी ब्राह्मण, जो पति अपने पत्नी को, जिसने 20 साल सताया, वो पति जिसने अपने पत्नी के लिए मार्ग में ब्रह्मचर्य और प्यूरिटी के लिए रोज झगड़े किए, बहुत मारा उसको, टॉर्चर किया, बंद करके रखा, एक दिन 20 साल के बाद वो पति ज्ञान में आ गया। तो जब वो 20 साल उसको सता रहा था तब भी वो देव कुल की ही आत्मा थी, थी कि नहीं थी? बिना उसके आई क्या ज्ञान में? पर हर एक का पार्ट अपना है और टाइम अपना है, अपने टाइम पर, समय से पहले, भाग्य से ज्यादा, बोलो किसने पाया है। इसके लिए यही समझना कि सब ब्राह्मण है, यही समझना सब ब्रह्मा कुमार और सब ब्रह्मा कुमारी है, केवल कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते। ये शब्द भी कहना इतना अच्छा नहीं है कि ये नॉन भी के है, हम कौन है स्टैंप लगाने वाले? अब ये कहना ये बहुत छोटी सी कन्या है, इसको क्या पता? अरे वो जो कन्या आई है और बहुत छोटी लग रही है, पता नहीं किस जन्म में क्या क्या तपस्या करके आई है सेंटर पर। हम आत्माओं की महानताओं को नहीं जानते, जो संस्कार से मुक्त होने के लिए हम इतने 20 साल से कोशिश कर रहे, उस आत्मा में वो संस्कार ही नहीं है, वो जन्मजात मुक्त है उससे, ये भी तो हो सकता है। तो हमारे बोल कैसे हो? शुभ हो, उसके लिए भावनाओं को शुभ बनाना पड़ेगा। तीसरा सुख देने वाले बोल हो, दुखदाई बोल ना हो, टॉन्ट वाले बोल ना हो, कमेंट वाले बोल ना हो, टीका करने वाले बोल ना हो, गिराने वाले बोल ना हो, किसी को घायल करने वाले बोल ना हो। कुछ कुछ की ऐसी आदत है कि जहां जाते हैं दो तीन लोगों को घायल करके आ जाते हैं। बिल्कुल पान का बीड़ा उठाया है कि जहां भी जाएंगे दो तीन लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे, किसी का हृदय को भेद देंगे, ऐसी कठोर वाणी है और नेचुरल है उनका, ऐसा ही बोलते हैं। अपमान करने वाले बोल, नीचा दिखाने वाले बोल, किसी को यह बताना कि तुम क्या हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम बुद्धू हो, मूर्ख हो, कहां से आ गए, सेंटर कौन सा है, तुमको इतना भी नहीं आता, ऐसे बोले। सुखदाई बोलो। रामायण में दिखाया है लक्ष्मण और राम, एक उग्र है एक शांत है। लक्ष्मण को बार बार क्रोध आता है, राम शांत है। वो परशुराम आता है, लक्ष्मण कितना उसके साथ वाद विवाद करता है जब वो धनुष तोड़ते हैं, और फिर राम के शब्द, जल सम वचन बोले रघुनाथा, जल के समान शीतल वचन है उसके। तो हमारे बोल सुखदाई हो, शीतल हो, शांत हो, आत्माओं को दुख न देने वाले हो। और कैसे हो, इधर से माताओं की तरफ से बोल कैसे हो, हाँ सच्चे हो, झूठ ना हो उसमें। हम सत्य के साथ तीन बातें करते हैं, एक तो सत्य को दबाते हैं, दूसरा अतिशयोक्ति बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, और तीसरा उसको थोड़ा सा ठीक ठाक करते हैं अपने रीति से, सुविधाजनक मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं थोड़ा। ये हम सत्य के साथ करते हैं। The tendency to exaggerate, modify or suppress truth, महात्मा गांधी ने लिखा है, is a natural tendency of man, मनुष्य का वास्तविक स्वभाव है, वो सत्य को या तो दबाता है या उछाल के बताता है या तो उसको चेंज करता है, और इसके लिए साइलेंस आवश्यक है। प्रोग्राम किया, प्रोग्राम में आए 200 लोग, हम बताते हैं 500 लोग आए थे। प्रोग्राम बहुत बढ़िया हुआ, 500 लोग थे, कहीं पर गए सेवा करने, भाषण करने, छोटा सा प्रोग्राम हुआ, उसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा है बाद में। 15 मिनट का प्रोग्राम, 50 फोटो, और हमने ये किया और वो किया और हमने ऐसा किया और वैसा किया। मम्मा 1.5 मास तक बेंगलोर रही, बहुत सारी सेवाएं हुई, वापस आई। मम्मा को पूछा, मम्मा सेवाएं कैसी थी, मम्मा ने कहा अच्छी थी, फुल स्टॉप, बस, और कोई वर्णन नहीं। वो तो भाई था, उसने बताया ये हुआ वो हुआ, ऐसा किया वैसा किया, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं। तो बोल शॉर्ट हो, विस्तार वाले ना हो, बोल में अतिशयोक्ति ना हो, किया छोटा और उसको ऐसे बता रहे कि बस सब हम कुछ, हम ही सब कुछ है। सप्रेस ना करे ट्रुथ को, सत्य जो है उसको वैसा ही सत्य, हमारे बोल प्रिय बोल हो तो सत्य हो। सच्चे हम हैं तो हमारे बोल भी सच्चे हो। और एक अव्यक्त वाणी है 69 की, जिसमें बाबा ने कहा है, जो बच्चे सोचते कुछ है और बोलते कुछ है, उनको बाप दादा ने एक टाइटल दिया है, कौन सा, खौफनाक। वो कौन से बच्चे हैं? खौफनाक बच्चे हैं वो। मराठी में एक संत है जिन्होंने लिखा है, बोले तैसे साले त्याची वंदना पाऊले, अंगे झाड़ी न अंगन त्याचे दायित्व करीन। यदि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखा दो जो वो करता है जो वो बोलता है, तो मैं अपने शरीर से उसके आंगन को झाड़ूंगा। पर ऐसा कोई मुझे मिलता ही नहीं। बोलते कुछ, करते कुछ, सोचते कुछ, तीन अलग अलग दिशाओं में चीजें जा रही है। जैसे पश्चिम जगत का एक महान लेखक कभी हुआ था मार्क ट्वेन, उसने अपनी जीवन संस्मरण में लिखा है, एक बार मैं चर्च गया, प्रवचन चालू था पादरी का, और प्रवचन था दान वृत्ति, गरीबों को दान करने से क्या होता है। और ऐसा प्रभावशाली प्रवचन था कि हमें अपना सारा पैसा भगवान को दे देना चाहिए, भगवान के लिए अर्पित करना चाहिए, वैसे भी सब कुछ व्यर्थ है। इतना वो भर गया उस प्रवचन से, सोचा अब जितने मैं $100 लेके आया हूं सारे ही डाल देता हूं आज प्रवचन के बाद। प्रवचन पूरा हुआ, फिर वहां पर एक टोकरा घूमता है चर्च में, ऐसी लाइन होती है ना, ऐसे 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 घूमता है, जिसको जितना डालना है वो डालो। तो वो सोचता है वैसे भी मेरा जीवन व्यर्थ है, आज तो मैं सब डाल दूंगा। अपने जेब में हाथ डालता है और पैसे होते हैं कॉइन्स, उनको लेता है। पर जैसे ही प्रवचन पूरा होता है वो सोचता है प्रवचन तो ठीक था पर $100 तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया, इतना देने की क्या जरूरत है, 75 देता हूं ये ठीक है। और वो टोकरा वो पीछे की रो में बैठा है, वो घूमने लगता है और देखता है बाकी लोग कितना दे रहे हैं, तो पता चलता है ये तो 75 तो बहुत ज्यादा हो गया, ये लोग तो कोई 20 कोई 30, कहता है मैं तो 50 दूंगा बस, 50 ठीक है। फिर दूसरी रो में घूमता है, वहां देखता है लोग तो और ही कम दे रहे हैं, वो कहता है ये 50 भी क्या, मैं खुद ही तो भगवान के लिए समर्पित हूं, पैसों का क्या महत्व है, मेरा जीवन ही भगवान के लिए है, तो पैसे से क्या होने वाला है, पैसे थोड़ी मांगता है कभी भगवान। वो कहता है ये 50 भी ज्यादा हो गए, 25 ठीक है। फिर और घूमता है और उसके तरफ आता है उधर की रो में, और वो देखता है बाजू के लोग कितना दे रहे हो, कहता है तो 50-25 भी बहुत ज्यादा हो गए, 10 ठीक है, मैं तो 10 दूंगा। उसके बाजू के इसमें तक आता है और तब तक वो सोचता है 10 भी बहुत ज्यादा है। और जब उसके पास आता है तो वो यहां वहां देखता है और उसी में से $10-20 निकाल लेता है, कहता है जो भगवान का है वो मेरा है, उसमें से ही निकाल लेता है। और चर्च से जाने के बाद सोचता है ये मैंने क्या कर दिया, मैंने सोचा क्या था और ये हो क्या गया, और ऑटोमेटिक हुआ सब, यहां तो को किसने बताया नहीं क्या करना है, बस जैसे वो कटोरा आया उसमें से देखा, इधर उधर किसी ने देखा नहीं और निकाल लिए पैसे। वो कहता है मैंने चोरी की, और सोचने लगता है ये क्या होता है, समझ में नहीं आता है मन कैसा काम करता है, किस तरीके से काम करता है और कैसे प्रभावित होता है और कैसे क्या करता है। विचार, गोल और कर्म तीनों अलाइनमेंट में हो, जो हम सोच रहे हैं वही बोल रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, तीन चीजें। तो हमारे बोल कैसे हो, सुखदाई हो, सच्चे हो, कम हो, मीठे हो, और शक्तिशाली हो, और संकल्प शक्तिशाली होंगे तो बोल भी शक्तिशाली होंगे। हाँ, सार युक्त हो, युक्ति युक्त हो, सार गर्भित हो, कल्याणकारी हो, जिससे दूसरों का कल्याण हो जाए। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, जब तुम बोलो तो दूसरी आत्माओं को बाप की याद आ जाए, इतने अच्छे वाक्य है, जब तुम बोलो तो आत्माओं को बाप की याद आ जाए। और कैसे हो बोल, दुआओं से भरे हो, जिसमें दुआएं हो। और पीछे से बोल कैसे हो, मधुर हो गया, मीठा में मधुर आ गया। और भक्ति मार्ग में दिखाया है कृष्ण की महिमा है, गोपी आए कृष्ण की महिमा करती, अधरम मधुरम वदनम मधुरम चलितम मधुरम चरितम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम। हे गोविंद हे गोपाल, तुम्हारा सब कुछ मधुर है। वेणु मधुरा, मधुरा गीत कहते हैं इसको, मधुराष्टकम, मधुर 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 पूरे वो गीत में मधुर मधुरी शब्द है। चलितम मधुरम चरितम मधुरम गमितम मधुरम रमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। तेरा सब कुछ मधुर ही मधुर है गोविंद, ये कृष्ण की महिमा है। तो हम भी देवता बनने वाले हैं, तो बोल कैसे हो मधुर, और कैसे हो पीछे से वो हो गया, जो हो गया वो नहीं बताना है। दूसरा ऊपर से अंदर से ठीक हो, जैसे वो कुम्हार का दिखाते हैं, ऊपर नीचे से हाथ रखता है ऊपर से ठोकता है। प्यार भरे हो, पालना करने वाले हो, और बस हीरे हो। कुछ दिन पहले मधुबन निवासियों से मुलाकात एक मुरली थी, दो तीन हफ्ता पहले, जिसमें बाबा ने कहा था मधुबन निवासियों के बोल कैसे हो, ऐसे हो कि जैसे रिकॉर्ड किए जाए सारे दिन भर के, भाषण वाले नहीं दिन भर वाले। और तो लो फिर बोलो, त्रिकालदर्शी स्थिति में बोल निकले, और उत्साहवर्धक, दूसरों का उमंग बढ़ाने वाले हो। ऐसा नहीं कि दूसरों को गिरा दे और वो ज्ञानी छोड़कर चला जाए, उसको ऐसा डांट दिया ऐसा डांट दिया, किसी से गलती क्या हो गई, उसको ऐसा डांटा कि माता हमेशा के लिए बाय बाय, आई नहीं कभी वापस, एक बात नहीं भूलनी है, व्यक्ति वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति चला जाएगा, वस्तु तो आ जाएगी वापस, व्यक्ति नहीं आएगा। वो कुमार जो हर्ट हो गया सेंटर पर, हमेशा के लिए चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। कोई दोस्त जिससे गलती क्या हो गई, हमने उसको ऐसा डांट दिया कि वापस नहीं आएगा। फिर विदेश की एक वरिष्ठ बहन ने एक बार अपना अनुभव सुनाया था हॉस्पिटल में। उसने कहा था सेंटर पर एक बार एक सेवा चल रही थी, और सभी भाई बहनों ने जो सेवाएं दी वो सारा अमाउंट एक बहन को रखने के लिए दिया, और वो बहन ने उसे गुम कर दिया, और सेवा एक बड़ी सेवा होने वाली थी जिसके लिए वो चाहिए था। तो इस बहन ने उसको थोड़ा सा डांट दिया कि तुमको इतना भी ध्यान नहीं रख सकती ऐसे वगैरह वगैरह, और बाद में वो पैसे जो गुम हो गए थे मिल गए। तो इस बहन ने अनुभव सुनाया, आज इस बात को 30 साल हो गए, और हम दोनों का जो रिश्ता है उसमें जो क्रैक दरार आ गई थी अब भी है। हमने बहुत सारी सेवाएं साथ में की, अब भी कर रहे हैं, परंतु वो जो क्रैक आ गई थी वो आज तक है, वो नहीं मिटी। मधुबन में भाई जी है हमारे, चिमन भाई जी, बहुत पुराने भाई है। बाबा 70s में आए थे, 71-72 में ज्ञान में, जब नए नए थे तो एक बार जो कुटिया है मधुबन में उसके बाजू से एक रास्ता नीचे जाता है भंडारे के तरफ, एक इधर जाता है बाबा के कमरे और शांति स्तंभ जो नीचे जाने वाला रास्ता है, वहां एक ट्रक खड़ा था, और वो ट्रक कुछ फल आए थे किसी सेंटर से, और वो ट्रक बीच में था। तो ये भाई को लगा कि मैं ये ट्रक थोड़ा सा पीछे ले लेता हूं, और उनको ड्राइविंग का थोड़ा एक्सपीरियंस था बहुत पहले, पर बहुत समय से चलाया नहीं था कोई गाड़ी या ट्रक, तो उनको लगा थोड़ा सा तो पीछे करना है ताकि लोग जा सके, वो बीच में आ रहा है कुटिया के रास्ते में। तो वो जाते हैं, गाड़ी ट्रक ऑन करते और ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल और सीधा पीछे जाता है। पीछे तीन कारें कर रही थी, दो तीन कार धाड़ धाड़ धाड़, और ट्रक जाके पीछे कहीं टकराया और कुछ बना था वहां रुक गया, तीनों कारों का नुकसान। तो उनको इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा, ये मैंने क्या कर दिया। और फिर थोड़े देर के बाद न्यूज आई, दादी ने बुलाया है, प्रकाशमणि दादी ने। उनको लगा अब क्या होगा पता नहीं मेरे से इतना बड़ा नुकसान हो गया यज्ञ का, पानी पानी अंदर से, क्या करूं, जाऊं नहीं जाऊं, इतना डर, इतना डर कि बस अब तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा यहां से अगर। तो दादी ने अपने कमरे में बुलाया, दादी का कमरा है हिस्ट्री हॉल के बाजू में, अब भी दो दिन खुला था, दो तीन दिन, 25 अगस्त के दिन। वो इतना डरा हुआ और एकदम दादी के कमरे में गया और दादी ने कहा बैठो, उसको लगा बस अभी फाइनल है, अभी पैक करके रखा सामान, अब घर जाना है। तो दादी ने कहा कैसे हो, ठीक हूँ। फिर दादी ने कहा नाश्ता किया क्या, नाश्ता उसने कहा दादी किया। फिर दादी ने कहा टोली खाओगे, ठीक है टोली। फिर दादी ने कहा ठीक है जाओ, बस वर्णन ही नहीं, कोई वर्णन नहीं। पता चल गया ना शाम को, सामने वाले को रियलाइज हो चुका है, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। उसी तरह दूसरा भी ऐसा ही दादी का उदाहरण, एक नया नया सेवाधारी शांतिवन में आया, एकदम नया ज्ञान में चलने वाला, किचन में गया, किचन में सेवा थी और बहुत बड़ा वो बर्तन जिसमें चाशनी बनी हुई थी, रात में बना के रखी थी, पता नहीं कितने किलो की चीनी उसमें होगी, रात में बना के रखी हुई थी, उसको लगा पानी है। सुबह सुबह गया और उसको उंडेल दिया और बाद में पता चला ये क्या हो गया, और धीरे धीरे सारे डिपार्टमेंट वालों को पता चल गया, अरे तुमने इतना बड़ा नुकसान कर दिया, अभी अभी आए नए नए और इतना बड़ा नुकसान, देखना तो चाहिए था क्या है। और वो बात एकदम सब जगह फैलने लगी, उसको इतना डर, इतना डर अब क्या होगा पता नहीं मेरे साथ। और फिर सुबह 10-11 बजे खबर पहुंची कि दादी ने कॉटेज में बुलाया है, अब तो बस सामान पैक करके रख दिया, अब तो जाना है यहां से बस। दादी ने वही बैठो, नाश्ता किया, टोली खाओ और जाओ, कुछ नहीं बोला, कुछ एक शब्द तक नहीं बोला। अगर बोल दिया हो तो शायद वो भाई हमेशा के लिए चला जाता। इसके लिए तीन चीजें याद रखनी है, सेवाओं की कीमत जो है वो 1000, व्यक्ति की कीमत 1,00,000 और स्थिति की कीमत है 1,00,00,000। सबसे ऊपर है हमारी स्थिति, उसके बाद है व्यक्ति संबंध, व्यक्ति रूट के ना चला जाए, और लास्ट में है सेवा वस्तुएं, पैसा। नुकसान होगा क्या कर सकते हैं, हुआ तो हुआ, किसी को डांटने से नुकसान वापस आने वाला है, पैसे से व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। वो व्यक्ति रूट के चला जाए, वो कुमार रूट के चला जाए, वो माता रूट के चली जाए, वो भाई रूट के चले जाए, कोई बहन रूट के चली जाए, हमारी वजह से कोई इस यज्ञ से जाने का निमित्त न बने। तो हमारे बोल प्रेरणादायक होने चाहिए, उत्साह बढ़ाने वाले, उत्साहवर्धक होने चाहिए, इंस्पायरिंग होने चाहिए, मोटिवेशनल होने चाहिए। और भी कुछ? स्वार्थ रहित, हमने 50 बोले थे अभी 10 भी नहीं हुए, निस्वार्थ होने चाहिए। और अब बोलते जाओ, बस वर्णन नहीं करेंगे, समय हो रहा है। समर्थ होने चाहिए, व्यर्थ ना होने चाहिए, निगेटिव नहीं होने चाहिए, शिक्षा देने वाले होने चाहिए, किसी को सिखाने वाले होने चाहिए। हो गया सुखदेव, हाँ क्या करने वाले, हताश करने वाले ना हो और सहानुभूति के बोल हो और प्रेममय बोल हो और शालीनता हो उसमें, रॉयल बोल हो, कम हो, मीठे हो, थोड़े हो और महान हो और सहयोग के बोल हो और संयमित हो, कंट्रोल्ड। इंग्लिश में कहते हैं स्पीच जो है वो सिल्वर है और साइलेंस जो है वो गोल्ड, और डायमंड क्या है, एक है स्पीच, बोलना जो है वो है सिल्वर, और एक है मौन, वो है गोल्ड। तो डायमंड क्या है, कंट्रोल्ड स्पीच इज डायमंड, संयमित बोल जो है वो मौन से भी श्रेष्ठ है, कंट्रोल्ड स्पीच इज डायमंड। और हमारे बोल कैसे हो, सुमान युक्त बोल हो, और हमारे बोल कैसे हो, निरंकारी बोल हो, और हमारे बोल कैसे हो, वरदानी बोल हो, और हमारे बोल कैसे हो, बाप समान बोल हो, और हमारे बोल कैसे हो जो आत्माओं पर छाप छोड़ जाए, हमारे बोल कैसे हो रहम से भरे हुए, और बोल कैसे हो विनम्रता हो, उसमें शीतल हो, सुखदाई हो, हमें भी शीतलता अनुभव, ऐसे ना हो कि बाद में पश्चाताप करना पड़े ऐसा क्यों बोल दिया, क्रोध वाले ना हो, हंसी मजाक में विकार की वायु ना हो। तो बोल का इस ब्राह्मण जीवन में बहुत महत्व है। तो बोल के पीछे भावनाएं काम करती है, भावनाओं पर काम करना है और आत्माओं को माफ करना, माफ कर देना। तो ऐसे अपने बोल को महान बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है विश्व में। और एक लास्ट बात, हमारे बोल में प्यूरिटी के वाइब्रेशंस हो, क्या हो, प्यूरिटी के वाइब्रेशंस हो। तो इस क्लास को यहीं पूरा करते हैं। अच्छा, ओम शांति।